सर दिल की बात पूछू क्या आपसे, आपको लगे मतलब क्या होता है कि नॉर्मल हम अपनी आम भाषा में गालियां बकते हैं
जी।
जब एक नॉवेलिस्ट कुछ भी लिखता है तो क्या उसे लगता है कि मैं इसको इसके अंदर ये पुट इन्वॉल्व करूं या नहीं करूं? आपके मन में क्या आता है कि नहीं मेरे को एक दो बीप डालना पड़ेगा, एक दो गाली डालनी पड़ेगी क्योंकि ये डिमांड है मेरे।
दरअसल गालियां जो है
जी
वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है
जी जी।
और गालियां जो पहले थी
जी
वो अब गालियां रहती नहीं है
जी, बिल्कुल सही बात।
जैसे
है।
पहले अबे साले ये गालियां होती थी,
बिल्कुल सही बात।
बाद में वो संबोधन
हो गया।
पहले सेक्सी बोलने से दंगे हो जाते थे, अब आप बढ़िया ड्रेसअप हो और लोग कहते हैं यू लुक सेक्सी और लोग खुश होते हैं
जी।
आप किसी लड़की को सेक्सी नहीं बोले तो माइंड कर जाएगी। तो टाइम के हिसाब से ना वैल्यूज बदलते हैं, लोकोक्तियां बदलती हैं, गालियां जो है उनको सम्मान मिलता है।
ऐसे एक बात मेरा और है, क्या होता है जब आप इस श्रेणी में आते हैं कुछ लिखना है मुझे और घर वाले बड़े मतलब परेशान करते हैं कि तू क्या कर रहा है, तो जॉब कर ले, तो बिजनेस कर ले, तो कि क्या लिखने में लगा पड़ा है। सर ऐसा कुछ चैलेंज आपके लाइफ में आया था कि यार घर वाले कुछ बोलते थे कि यार तू क्या कर रहा है मेरे भाई?
थैंकफुली नहीं आया कभी ऐसा चैलेंज
जी।
और पहली टाइटल से ही आई एम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर,
ग्रेट सर।
तो
मतलब मजा,
आई एम अ रिच गाय क्योंकि मैं लिखने के पीछे मेरी वजह सिर्फ दो थी, आई वांटेड टू बी रिच एंड फेमस।
मतलब वो हो गया,
वो हो रहा है,
वो हो रहा है।
तो आप बुलाते हैं मुझे भीड़ से निकाल के।
सर मतलब गर्ल्स, मतलब मैं सामने गर्ल्स दिखाओ एक बार, सामने दिखाओ सलोनी। हाँ ये सर सेल्फी क्रेज है, मतलब क्या एक मैं सोचता हूँ कि दुबे सर एक सेल्फी कुछ लेके आने वाले हैं, गर्ल्स का सेल्फी के प्रति क्रेज
जी, जी।
इस पे कुछ अगर बोलना चाहें सर प्लीज।
देखिए ये बहुत अच्छा एक्साइटिंग टाइम है जिसमें हम लोग रह रहे हैं
जी।
जो लोग पहले फ्राउनिंग फेस लेके घूमते थे
जी,
कम से कम सेल्फी के टाइम पे मुस्कुरा तो लेते हैं जो झगड़ते सेल्फी के टाइम पे चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ये एक मुस्कुराने का वक्त है
जी,
और सेल्फी लेनी है तो लोग डेक्ड अप होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, मेकअप में रहते हैं, स्माइल करते हैं। तो मुझे लगता है ये अच्छा वक्त है सेल्फी का प्रचलन और बढ़े, लोग खुश रहे और हमें स्प्रेड करने की जरूरत है लाफ्टर और लव।
ये बस आखिरी सवाल है सर से दुबे सर से कि सर वो एक टॉपिक जो इंडिया में को लगता है कि यार मुझे इस पे अब तो बुक लिखनी ही पड़ेगी,
हाँ।
वो अगर आप मुझे बताना चाहें।
देखिए टॉपिक्स तो कई हैं
जी,
अभी भी जो मैंने मेरी किताब आई है लव करी, आपको ताज्जुब होगा कि ये एक पॉलिटिकल नॉवेल है
जी।
ये सेट है लंदन में, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के तीन दोस्त एक साथ रहते हैं
जी।
और तीनों को एक ही लड़की से मोहब्बत है जो कि ब्रिट इंडियन है।
अच्छा।
जिनका नाम है जीनत अमान।
अच्छा।
और उन्हें रियलाइज होता है कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हम लोग यहाँ खामखा लड़ते रहते हैं, जब बड़े संकट आते हैं तो वी आर ऑल वन, हम लोग कल्चरली एक है, सोशियोलॉजिकली एक है, हमें एक ही जैसी लड़की पसंद आती है।
जी
तो इट्स अ पॉलिटिकल, तो मुझे लगता है काफी रेलेवेंट है और काफी हाथों हाथ लोगों को JLF में भी मजा आ रहा है इसको लेकर पढ़ने में।
क्या बात है, तालियां दुबे सर के लिए, बहुत जबरदस्त शुक्रिया। सुपर हिट्स 93.5 रेड FM बजाते रहो।
हाय मैं हूँ पंकज दुबे, आप मुझे सुन रहे हैं रेड FM पे,
सुपर हिट्स 93.5 रेड FM पे। मैं हूँ प्रवीण और अभी मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं उनका नाम है पंकज दुबे। ये नाम अब ऐसा नहीं है कि इस नाम को कोई जानता नहीं है, पिछले कई सालों में इनकी कई किताबें आई जो बेस्ट सेलर रही, हिंदी को नई ऊंचाइयों पे ले जाने वालों में लेखकों में से पंकज सर रहे हैं हमारे साथ। पंकज जी आप हमारे साथ हैं, आपको कैसा लग रहा है पहले JLF में आके हमें ये बताइए।
काफी एक्साइटिंग है क्योंकि दुनिया भर से दोस्त वापस मिल रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं और जो उत्साह जो एनर्जी ऊर्जा यहाँ दिख रही है वो काबिले गौर है, काबिले तारीफ है, मजा आ गया।
मजा आया सर। सर आपकी काफी बेस्ट सेलर किताबें आई, सबसे पहली जो मैंने जो पढ़ी थी लूजर कहीं का थी, उसके बाद वो किताब काफी डिफरेंट लगी मुझे, तो उसके बाद से आप क्या नया कुछ लिख चुके हैं और आगे क्या प्लानिंग चल रही है आपकी?
कई आ गई क्योंकि मैं बाइलिंगुअल ऑथर हूँ और इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साथ लिखता हूँ अपनी कहानियां। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि एक ही ऑथर अनुवाद न करे और सेम प्लॉट और स्टोरी को दो भाषाओं में लिखे। तो लूजर कहीं का आपको पसंद आई थी, मेरे लिए खुशी की बात है, वॉटर लूजर इंग्लिश में थी। उसके बाद आई इश्कियापा और अंग्रेजी में उसका नाम था इश्कियापा टू हेल विथ लव, दोनों बेस्ट सेलर हैं और JFF में भी एक बेस्ट सेलर की सूची जारी की गई, दैनिक जागरण ग्रुप ने किया नीलसन के साथ मिलके, उसमें ऑल इंडिया 10 में है वो। और अभी अभी आई जो किताब यहाँ पे वो है लव करी, लव करी सेट है लंदन में और तीन दोस्तों की कहानी है, एक इंडिया एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश से है और तीनों को एक ही लड़की से मोहब्बत है जो ब्रिट इंडियन है, उनके मकान मालिक की बेटी है और ये दोनों भाषाओं में लव करी भी, तो ये है।
सर ये जो ट्रेंड जो पिछले कई सालों में चेंज हुआ है हिंदी लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा यूथ के लिए बनाने को लेकर क्या हिंदी लैंग्वेज को इजी किया गया है किताबों में, ऐसा मैं कई सालों से देख रहा हूँ ट्रेंड काफी चेंज हो गया है। क्योंकि जो अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं खुद एविड रीडर हूँ काफी हिंदी लिटरेचर का, तो जैसा प्रेमचंद लिखते थे, जैसा फणीश्वर नाथ रेणु जी लिखते थे, जैसा रामधारी सिंह दिनकर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काफी जो बड़े राइटर्स हमारे जो पिछली सदी के रहे हैं, अभी वैसी किताबें आना बंद हो गई हैं पूरी तरीके से, और थोड़ा यूथ बेस्ड बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कई बार डेलिबरेट लगता है।
बिल्कुल,
ये बुरा लगता है कई बार।
तो असल बुरा भला नहीं, मेरा मानना है कि समय, वक्त, लोकोक्तियां, भाषा, दौर, सब कुछ बदलता है। अब वो पाठक नहीं है जिनको रेणु पढ़ना है, अब वो पाठक नहीं है जिनको सिर्फ प्रेमचंद पढ़ना है। अभी डिजिटल मीडिया के आने से अटेंशन स्पैन बहुत कम हुआ है। अगर मान लीजिए अभी आपको किसी लड़की से प्यार है और आप उनको बिठा के अज्ञेय की कविता सुनाएंगे कि अगर मैं तुमको ललाते सांधे के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, तो नहीं कारण कि मेरा प्यार झूठा या कि मैला या फिर उथला हो गया है, बस ये उपमान मैले पड़ गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, तो लड़की कूच कर जाएगी इस कविता के खत्म होने के पहले। उसको तो उसकी भाषा में आपको बोलना पड़ेगा, चल सुनिए, एक सेल्फी खींचे, पाउट बनाए, अखियां मीचे। तो ये ना जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, जो रीडर्स जिस तरह के बन रहे हैं, और वैसे भी रीडरशिप को वापस बनाने के लिए उसमें दिलचस्पी को और उनकी भाषा को लाना जरूरी है ताकि वो जुड़ पाए। टेक्स्ट बुक तो है ही उनके पास काफी बोरिंग, अगर आप उनको जनरल रीडिंग भी बोरिंग कर देंगे और बहुत प्रीची कर देंगे। आप खुद सोचिए, आप अपने घर में, अपने बड़ों से, टीचर से, समाज में किसी से ज्ञान लेने के मूड में नहीं है, और तब तो और भी नहीं जब आप खुद सैलरी कमा लेते हैं, कि आप किसी की क्यों सुनेंगे, तो आप किसी की क्यों पढ़ेंगे ज्ञान वाली प्रीची बातें, अगर आपको अटेंशन नहीं मिले, आपकी अटेंशन को वो एकदम से ट्रैप नहीं कर ले। तो दिलचस्पी का होना जरूरी है ताकि रीडरशिप बनी रहेगी। वो दिलचस्पी तब आएगी जब आप यूथ की भाषा में बात करेंगे जिनको आप टारगेट कर रहे हैं।
ये अगर मैं टारगेट ऑडियंस की बात करूं, आप जैसा कह रहे हैं, तो इसी सवाल को थोड़ा वृहत्तर रूप देते हुए
जी,
10 सालों में जितना JLF ने ग्रो किया है, शायद ही किसी और लिटरेचर फेस्टिवल ने ग्रो किया,
पूरी दुनिया में कहीं नहीं,
कहीं नहीं किया है। जितनी भीड़ अभी आप स्टूडियो के बाहर देख रहे हैं कि लोग एक तरीके से पगलाए हुए हैं सेल्फीज को लेकर के या बुक्स को लेकर के, सेशन अटेंड करने को लेकर के, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यही यूथ लिटरेचर को सही से संभाल पाएगा?
ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है, संभाल पाना नहीं संभाल पाना। ये यूथ कल अपने काम में लग जाएगा, फिर नए यूथ आएंगे, और लिटरेचर किसी तिजोरी में रखी कोहिनूर की तरह उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, और लिटरेचर की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। लिटरेचर अपनी चिंता खुद कर लेगा बदलते समय में। ये ऑटो पायलट मोड पे है, बहुत लोग भाषा को, साहित्य को लेके ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे इसका जन्म उनके पैदा होने के बाद हुआ है और उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ डार किया जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, तब कई लोग पैदा नहीं हुए थे तब भी साहित्य था, और वो मृत्यु को प्राप्त होंगे उसके बाद भी साहित्य रहेगा, उसका फ्लेवर बदलेगा, उसका रंग बदलेगा, उसकी प्रोफाइल पिक्चर बदलती रहेगी।
ये अगर मैं टारगेट ऑडियंस की बात करूँ, आप जैसा कह रहे हैं, तो इसी सवाल को थोड़ा वृहत्तर रूप देते हुए
जी,
JLF 10 सालों में जितना JLF ने ग्रो किया है, शायद ही किसी और लिटरेचर फेस्टिवल ने ग्रो किया,
पूरी दुनिया में कहीं नहीं,
कहीं नहीं किया है। जितनी भीड़ अभी आप स्टूडियो के बाहर देख रहे हैं कि लोग एक तरीके से पगलाए हुए हैं सेल्फीज को लेकर के या बुक्स को लेकर के, सेशन अटेंड करने को लेकर के, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यही यूथ लिटरेचर को सही से संभाल पाएगा?
ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है, संभाल पाना नहीं संभाल पाना। ये यूथ कल अपने काम में लग जाएगा, फिर नए यूथ आएंगे, और लिटरेचर किसी तिजोरी में रखी कोहिनूर की तरह उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, और लिटरेचर की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। लिटरेचर अपनी चिंता खुद कर लेगा बदलते समय में। ये ऑटो पायलट मोड पे है, बहुत लोग भाषा को, साहित्य को लेके ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे इसका जन्म उनके पैदा होने के बाद हुआ है और उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ डार किया जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, तब कई लोग पैदा नहीं हुए थे तब भी साहित्य था, और वो मृत्यु को प्राप्त होंगे उसके बाद भी साहित्य रहेगा, उसका फ्लेवर बदलेगा, उसका रंग बदलेगा, उसकी प्रोफाइल पिक्चर बदलती रहेगी।